पृष्ठ संख्या 138, शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद पैनेंथिज्म। इसके अंतर्गत शीर्षक है अर्थ। पुरुषोत्तमवाद को अंग्रेजी में पैनेंथिज्म कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक क्राउजे ने किया था। इस शब्द के विश्लेषण से इसके अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। पैन का अर्थ होता है आल, अर्थात सब। एन का अर्थ है इन, अर्थात में। और सिजम का अर्थ है गॉड, अर्थात ईश्वर। अर्थात ऑल इज इन गॉड, सब ईश्वर में है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विश्व ईश्वर में है, न कि विश्व ईश्वर है और ईश्वर विश्व है। इसको हिंदी में निमित्तोपादनेश्वरवाद भी कहते हैं। अतः इसके अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। निमित्त कारण इसलिए है कि वह विश्व की रचना करके विश्व से अलग रहता है, जैसे बढ़ई मेज बनाकर उससे अलग रहता है। ईश्वर उपादान कारण इसलिए है कि यह किसी बाहरी वस्तु से विश्व का निर्माण नहीं करता, वरन विश्व उसकी अपनी ही प्रकृति का परिणाम है। वह विश्व में व्याप्त रहता है, जिस प्रकार लकड़ी मेज में व्याप्त रहती है। यहाँ हमने पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि यह मत ईश्वर को पुरुषोत्तम मानता है। इसके अनुसार ईश्वर जगत का निर्माता, रक्षक और पालक है। ईश्वर अनंत, सर्वव्यापक और असीम होते हुए भी परम पुरुषोत्तम है। अतः इस मत को पुरुषोत्तमवाद कहना अनुचित नहीं है। अगला शीर्षक है स्वरूप और विशेषताएं। इसमें पहला बिंदु है विश्व ईश्वर में है। पुरुषोत्तमवाद के अनुसार विश्व ईश्वर में है। ईश्वर से स्वतंत्र विश्व की कोई सत्ता नहीं है। विश्व ईश्वर का अंश है, अतः विश्व उससे अलग नहीं है। दूसरा है ईश्वर विश्व का समीकरण नहीं, विश्वातीत ईश्वर। विश्व ईश्वर पर पूर्णतया आश्रित है, परंतु ईश्वर और विश्व एक ही नहीं है। दोनों का समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर विश्व के अलावा और भी बहुत कुछ है। जिस प्रकार कवि अपने अंदर से कविताओं की रचना करता है, परंतु ये कविताएं कवि का सब कुछ न होकर अंश मात्र होती है, उसी प्रकार ईश्वर अपने अंदर से जगत की सृष्टि करता है, परंतु सृष्टा होते हुए भी विश्वातीत होता है। बिंदु तीसरा है निर्माता, रक्षक, अनंत तथा व्यक्तित्व शून्य ईश्वर। निमित्त कारण के रूप में ईश्वर विश्व का निर्माता, रक्षक और पालक भी है। पुरुषोत्तमवाद ईश्वर को स्वयंभू, अनंत, असीम, सर्वव्यापक और व्यक्तित्व शून्य मानता है। बिंदु चौथा है एकेश्वरवादी है। पुरुषोत्तमवाद ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, अतः वह संख्यात्मक एकवाद को मानता है, अर्थात यह एकेश्वरवादी सिद्धांत है। बिंदु पांचवा है विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों माना जाता है। जगत ईश्वर की ही परिणति है, इसलिए संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। वह विश्वातीत है क्योंकि निमित्त रूप से वह जगत से परे है। पृष्ठ संख्या 139। अगला शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद के उदाहरण। इसमें पहला है, पुरुषोत्तमवाद का सबसे अच्छा उदाहरण हेगल के विचारों में मिलता है। हेगल के अनुसार निरपेक्ष सत्ता जो आत्मचेतन है ही ईश्वर है। सृष्टि ईश्वर की आवश्यक अभिव्यक्ति है। ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत है। दूसरा है, बर्गसान ने प्राण शक्ति को ही ईश्वर कहा है। इनके अनुसार ईश्वर स्वतंत्र और व्यक्तित्व शून्य है। इनके अनुसार ईश्वर विश्व की समस्त घटनाओं में समाहित होते हुए भी उनमें समाप्त नहीं हो जाता। उसकी सत्ता स्वतंत्र रहती है, अतः वह विश्वातीत एवं विश्वव्यापी दोनों कहा जा सकता है। तीसरा है, भारतीय दर्शन में शंकराचार्य का अद्वैतवादी दर्शन पुरुषोत्तमवाद का प्रतिपादन करता है। शंकर के अनुसार परम तत्व ब्रह्म है। वह असीम, अनंत और निर्गुण है। व्यक्तित्व शून्य है, विश्व सत्य नहीं है। ब्रह्म के लिए जगत आवश्यक नहीं है। ब्रह्म जगत के दोषों से अछूता है। अतः ब्रह्म विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। हेगल और शंकर में अंतर यही है कि हेगल विश्व को ईश्वर की वास्तविक अव्यक्ति मानते हैं, परंतु शंकर अवास्तविक मानते हैं, भ्रम और मिथ्या कहते हैं। अगला शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद में जगत और ईश्वर का संबंध। जगत का उपादान कारण स्वयं ईश्वर है, अतः जगत का निर्माण शून्य से नहीं हुआ है। जगत में दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जगत ईश्वर पर आधारित है। ईश्वर जगत पर निर्भर नहीं है क्योंकि ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र है। अगला शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर और मानव का संबंध। ईश्वर की अव्यक्ति जड़ और चेतन इन दो रूपों में हुई है। चूंकि मानव चेतन है, अतः इसमें ईश्वर की अव्यक्ति जड़ की अपेक्षा अधिक हुई है। जगत ईश्वरमय है, इसलिए मनुष्य में शुभ और अशुभ देखना ईश्वर में शुभ और अशुभ देखना हुआ। अशुभ का पूर्ण उच्छेदन संभव नहीं है। मानव का अशुभ से छुटकारा नहीं है क्योंकि वह ईश्वराधीन है। अगला शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद का अन्य सिद्धांतों से संबंध। इसमें बिंदु अ है देववाद और पुरुषोत्तमवाद। इसमें पहला है, दोनों एकेश्वरवादी मत है तथा दोनों में ईश्वर ही पारमार्थिक सत्ता है। दोनों सिद्धांतों में ईश्वर निमित्त कारण है। दूसरा है, देववाद का ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है, परंतु पुरुषोत्तमवाद का ईश्वर व्यक्तित्व शून्य। तीसरा है, देववादी ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, जबकि पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। चौथा है, देववाद के अनुसार जगत की सृष्टि शून्य से होती है, परंतु पुरुषोत्तमवाद में जगत की सृष्टि शून्य से नहीं होती, इसमें ईश्वर ही उपादान कारण के रूप में है। पृष्ठ संख्या 140। पांचवा है, देववाद में ईश्वर विश्वातीत माना जाता है और पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर विश्वातीत एवं विश्वव्यापी दोनों माना जाता है। छठवां है, देववाद में ईश्वर जगत का केवल सृष्टा है, परंतु पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता भी है। बिंदु ब है, पुरुषोत्तमवाद एवं सर्वेश्वरवाद। इसमें पहला है, दोनों ईश्वर को एक पारमार्थिक सत्ता मानते हैं, दोनों ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानते हैं, दोनों ईश्वर और जगत को अभिन्न मानते हैं। दूसरा है, पुरुषोत्तमवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, परंतु सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर केवल उपादान कारण है। तीसरा है, पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत है और सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी है। चौथा है, पुरुषोत्तमवाद में उपासक तथा उपास्य का भेद स्वीकार किया गया है, जबकि सर्वेश्वरवाद में यह भेद नहीं है। अगला शीर्षक है, पुरुषोत्तमवाद में धार्मिक मनोवृत्ति का स्थान। इसमें पहला बिंदु है, व्यक्तित्व शून्य ईश्वर से धार्मिकता की पूर्ति नहीं। पुरुषोत्तमवाद में धार्मिक मनोवृत्ति का स्थान संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है, उसमें संकल्प, इच्छा, प्रेम, करुणा आदि का अभाव है। अतः ऐसा ईश्वर धार्मिक व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता। बिंदु दूसरा है, इच्छा स्वातंत्र के अभाव में धार्मिकता का लोप। पुरुषोत्तमवाद में इच्छा स्वातंत्र को नहीं माना जाता, क्योंकि विश्व ईश्वर की प्रकृति का ही परिणाम है। इससे यह सिद्ध होता है कि विश्व नैतिकता से रहित है। फिर तो अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम का कोई प्रश्न ही नहीं है। धार्मिकता के लिए नैतिकता आवश्यक है, परंतु इस मत में इच्छा स्वातंत्र के अभाव में धार्मिक आचरण संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से भी पुरुषोत्तमवाद में धार्मिक मनोवृत्ति को कोई स्थान नहीं है। बिंदु तीसरा है, अशुभ का उन्मूलन संभव नहीं। पुरुषोत्तमवाद में जगत ईश्वर की प्रकृति का ही परिणाम है, इसलिए अशुभ भी आवश्यक हो जाता है। चूंकि ईश्वर नित्य है, इसलिए अशुभ भी नित्य है और उनका विनाश संभव नहीं। अतः यह धार्मिकता की दृष्टि से निराशावादी है। बिंदु चौथा है, ईश्वर अपूर्ण है। पुरुषोत्तमवाद में ईश्वर विश्वव्यापी है, जगत के सुख दुख आदि ईश्वर में भी हैं। इस दृष्टि से ईश्वर पूर्ण नहीं। यदि वह पूर्ण होता तो इन अभावों से रहित होता। अतः अपूर्ण ईश्वर धार्मिकता की दृष्टि से संतोष पूर्ण नहीं है। धर्म में तो ईश्वर असीम और पूर्ण होना चाहिए, जो धार्मिक व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। अतः यह मत धार्मिकता की दृष्टि से संतोषपूर्ण नहीं है। अगला शीर्षक है पुरुषोत्तमवाद का मूल्यांकन। पुरुषोत्तमवाद सर्वेश्वरवाद की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यह ईश्वर का उत्कृष्ट रूप हमारे सामने उपस्थित करता है। इसका ईश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी जगत के बराबर नहीं है। फिर भी इस मत में सर्वेश्वरवाद की ही कठिनाइयां वर्तमान है। इसमें भी इच्छा स्वातंत्र को स्थान नहीं है। पृष्ठ संख्या 141। जगत के दोष ईश्वर पर आरोपित हो जाते हैं। यह निराशावाद को प्रश्रय देता है। इसमें भी नैतिक चेतना की संतुष्टि नहीं हो पाती। पुरुषोत्तमवाद की सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि इसमें ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य माना गया है, जिससे धार्मिकता को अवलंब नहीं मिलता। शंकराचार्य ने अपने मत में इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विश्व को मिथ्या एवं भ्रम बताया और माया से उपहित ब्रह्म को स्वीकार किया। माया के कारण विश्व मिथ्या है, इसलिए विश्व के दोष ब्रह्म पर नहीं लगते। साथ ही सगुण ब्रह्म या ईश्वर से धर्म की रक्षा भी हो जाती है। परंतु शंकर का माया का सिद्धांत ही तर्क संगत नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अतः यह कठिनाई जैसी कि तैसी बनी रहती है। अगला शीर्षक है द ईश्वरवाद याथिज्म। इसमें शीर्षक है ईश्वरवाद का अर्थ। वैसे तो ईश्वरवाद का अर्थ होता है वह मत जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करे। अतः ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने वाले सभी मत ईश्वरवाद के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ जिस ईश्वरवाद की चर्चा हो रही है वह विशिष्ट अर्थ में है। विशिष्ट अर्थ में यह ईश्वरवाद एकेश्वरवादी मतों में से एक मत है, जिसके अनुसार ईश्वर अनंत और व्यक्तित्व पूर्ण है। वह सृष्टिकर्ता और पालन करता है। विश्व का अस्तित्व पूर्णतया ईश्वर पर ही निर्भर है। विश्व में ईश्वर व्याप्त भी है और उससे परे भी। अगला शीर्षक है ईश्वरवाद में ईश्वर की विशेषताएं। पहला है ईश्वरवाद में ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। दूसरा है ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण होने से अनेक गुणों से युक्त है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। तीसरा है ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण है। चौथा है ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी तथा विश्वातीत है। पांचवा है ईश्वर विश्वव्यापी होते हुए भी विश्व में विलीन नहीं हो जाता। वह विश्व की सीमाओं में आबद्ध नहीं होता, क्योंकि वह महान है। अगला शीर्षक है ईश्वरवाद तथा अन्य सिद्धांत। इसमें बिंदु अ है शीर्षक ईश्वरवाद तथा पुरुषोत्तमवाद। इसमें शीर्षक है समानता। इन दोनों मतों में पर्याप्त साम्य है। जैसे अ दोनों यह मानते हैं कि ईश्वर एक है, असीम है तथा सर्वव्यापक है। व दोनों के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी तथा विश्वातीत है। बिंदु स, दोनों यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण है, अतः विश्व के लिए ईश्वर आवश्यक है, यह दोनों मानते हैं। अब शीर्षक है अंतर। इन दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि पुरुषोत्तमवाद ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानता है, परंतु ईश्वरवाद में ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। अगला शीर्षक है व देववाद तथा ईश्वरवाद। इसमें शीर्षक है समानता। देववाद और ईश्वरवाद में केवल एक समानता है कि दोनों ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण मानते हैं। अब अंतर है बिंदु अ, अंतर की दृष्टि से देववाद जहां ईश्वर को विश्व का केवल निमित्त कारण मानता है, वहां ईश्वरवाद ईश्वर को विश्व का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों मानता है। व है देववाद में ईश्वर विश्वातीत है, परंतु ईश्वरवाद में विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है। पृष्ठ संख्या 142। शीर्षक है बिंदु स, ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद। ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद का विरोध दो बातों में देखा जाता है। पहला है ईश्वरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों मानता है, तथा सर्वेश्वरवाद ईश्वर को केवल विश्वव्यापी मानता है। दूसरा है सर्वेश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है, परंतु ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। अगला शीर्षक है ईश्वरवाद में जगत और मनुष्य का स्थान। इसमें पहला शीर्षक है ईश्वर और जगत। ईश्वरवाद में जगत की रचना ईश्वर द्वारा हुई है। ईश्वर जगत में व्याप्त रहता है। यह जगत ईश्वर पर ही आधारित है। जगत ईश्वर के अभाव में नहीं रह सकता। ईश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी जगत से परे है। वह जगत में अपने को विलीन नहीं कर देता। वह जगत से परे होकर भी अपना संबंध जगत से बनाए रखता है। ईश्वर जगत का सृष्टा, रक्षक और पालन करता भी है। अगला शीर्षक है ईश्वर और मानव। ईश्वरवाद में मानव का संतोषप्रद स्थान है। ईश्वर ने मानव को इच्छा स्वातंत्र दी है। मानव अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर मानव के कर्मों में बाधक नहीं होता। चूंकि ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है, इसलिए मानव ईश्वर को अपनी पुकार सुना सकता है। उससे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और श्रद्धा भक्ति की आशा रख सकता है। ईश्वरवाद में मानव के कष्टों का समापन हो सकता है। इसमें जीवन साफल्य की संभावना निहित है, अतः यह सुधारवादी है। ईश्वरवाद मानव की दृष्टि से देववाद तथा पुरुषोत्तमवाद के बीच स्थित है। देववाद मानव को आशावादी बनाता है और पुरुषोत्तमवाद निराशावादी, परंतु ईश्वरवाद मानव को सुधारवादी बनाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। अगला शीर्षक है ईश्वरवाद के उदाहरण। पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों के जितने भी ईश्वर संबंधी मत हैं अधिकांश रूप में ईश्वरवादी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऐतिहासिक धर्म ईश्वरवाद के उदाहरण स्वरूप हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी और पारसी धर्म ईश्वरवाद के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये सभी ईश्वरवादी धारणा का समर्थन करते हैं। पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों में ईश्वरवाद के जितने समर्थक हैं उनके मत भी ईश्वरवाद के उदाहरण कहे जा सकते हैं। डेकार्त, लॉक, बर्कले, प्रिंगल, पीटिसन, सोरेल, फ्लिंट और जेम्स वार्ड आदि पाश्चात्य दार्शनिक ईश्वरवादी हैं तथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य तथा श्री चैतन्य आदि भारतीय दार्शनिक भी ईश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। वेद, उपनिषद तथा गीता में भी ईश्वरवाद का प्रकाश पड़ता है। अगला शीर्षक है ईश्वरवाद का मूल्यांकन। ईश्वरवाद का मूल्यांकन हम दो रूपों में कर सकते हैं। प्रथम यह है कि ईश्वरवाद कितना बुद्धि संगत है या यह मानव की बुद्धि को कितना संतोष प्रदान कर सकता है। दूसरा यह है कि ईश्वरवाद में धार्मिकता को कितना महत्व दिया गया है या यह मानव की धार्मिकता मनोवृत्ति को कितना संतुष्ट कर सकता है। पृष्ठ संख्या 143, बिंदु अ है ईश्वरवाद कितना बुद्धि संगत है। ईश्वरवाद के आलोचकों ने इसकी आलोचना करके यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ईश्वरवाद बुद्धि संगत नहीं है और इसके द्वारा मानव बुद्धि को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। परंतु यदि उन आलोचनाओं का निराकरण करके देखें तो ईश्वरवाद अवश्य ही बुद्धि संगत प्रतीत होता है। पहला है ईश्वरवाद के विरुद्ध प्रथम तर्क यह है कि व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ईश्वर को गुणयुक्त माना जाए तो वह सीमित हो जाएगा। स्पिनोजा के अनुसार किसी वस्तु में गुणों का आरोप करना ही उसे सीमित करना है। अगला शीर्षक है निराकरण। यह तर्क सांसारिक वस्तु के लिए तो सही हो सकता है, क्योंकि संसार की वस्तुएं विरोध के नियम को नहीं तोड़ सकती। जैसे कोई वस्तु सफेद और काली दोनों एक साथ नहीं हो सकती, परंतु ईश्वर के लिए विरोध के नियम को लागू करना ईश्वर के ईश्वरत्व को समाप्त करना होगा। ईश्वर तो पूर्ण और सर्वशक्तिमान है, उसमें सभी रूप और गुणों का होना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ऐसा नहीं मानते तो उसकी पूर्णता खंडित होती है। अतः ईश्वर का व्यक्तित्व संपन्न होना बुद्धि संगत है। दूसरा है, दूसरा आक्षेप है कि ईश्वर जगत की रचना क्यों करता है? क्या उसे सृष्टि रचना की आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है तो वह पूर्ण नहीं है, और यदि उसे जगत की आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ में शक्ति का अपव्यय क्यों करता है? निराकरण। ईश्वर जगत की रचना किसी अभाव की पूर्ति में नहीं करता, वरन सृष्टि उसका स्वाभाविक धर्म है। इसीलिए सृष्टि की आवश्यकता होती है, वह स्वभाव से लीलामय है। जिस प्रकार फव्वारे के अंदर संचित शक्ति फव्वारे के रूप में फूटे बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी शक्ति को सृष्टि के रूप में व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। सूर्य का जिस प्रकार स्वाभाविक धर्म है प्रकाश का विस्तार करना, उसी प्रकार लीला में ईश्वर का स्वाभाविक धर्म है प्रकाश करना। अतः ईश्वर की सृष्टि रचना की आवश्यकता बुद्धि संगत प्रतीत होती है। तीसरा तर्क है कि ईश्वर विश्वव्यापी है, अतः शुभ अशुभ का उत्तरदायित्व उसे लेना पड़ेगा। निराकरण। यह आक्षेप सर्वेश्वरवाद तथा पुरुषोत्तमवाद के विरुद्ध भी किया जाता है। इनके पास इसका कोई सहज उत्तर भी नहीं है, परंतु ईश्वरवाद के अनुसार शुभ अशुभ तथा सुख दुख के लिए ईश्वर को दोषी नहीं बताया जा सकता। मनुष्य में इच्छा स्वतंत्र है, वह स्वेच्छा से सुख दुख भोगता है और शुभ अशुभ कार्यों को करता है। भारतीय दर्शन में इसकी व्याख्या कर्म तथा पुनर्जन्म के आधार पर की गई है, जो बुद्धि संगत प्रतीत होती है। पृष्ठ संख्या 144, बिंदु चौथा है। कुछ लोगों का यह आक्षेप है कि मनुष्य का इच्छा स्वातंत्र वास्तविक नहीं है, यह ईश्वर प्रदत्त है, अतः वास्तविक नहीं है। निराकरण। ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता की यदि वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए तो प्रस्तुत आक्षेप स्वतः मिट जाए। ईश्वर की देन कोई साधारण व्यक्ति की देन के समान नहीं है। जीवों के प्रति ईश्वर की देन जीव के अपने स्वभाव की एक वस्तु है। ईश्वर की देन ही जीव का स्वभाव है। अगला शीर्षक है बिंदु ब, ईश्वरवाद में धार्मिकता का महत्व। ईश्वरवाद नैतिकता और धार्मिकता दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें मानव इच्छा स्वातंत्र के कारण कर्म करने की स्वतंत्रता है, वह अपने शुभ अशुभ कार्यों के फल स्वरूप सुख दुख का भोग करता है। ईश्वरवाद में मनुष्य ईश्वर के साथ बधा भी हुआ है और स्वतंत्र भी है। इस तथ्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है, मनुष्य उसी प्रकार स्वतंत्र है जिस प्रकार गाय खूंटे में बंधी हुई है, परंतु खूंटे के आसपास वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकती है। अतः मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है। ईश्वरवाद में नैतिकता का स्थान है। नैतिकता धार्मिकता के लिए अनिवार्य है। ईश्वरवाद में धार्मिकता का पूर्णतया महत्वपूर्ण स्थान है। गैलवे ने ठीक ही कहा है कि ईश्वरवाद का जन्म मनुष्य की धार्मिक आकांक्षा की पूर्ति और संतुष्टि के लिए ही हुआ है। धर्म के उपासक और उपास्य का भेद आवश्यक है। देववाद और सर्वेश्वरवाद इस कमी को पूर्ण करने में असफल रहे हैं, क्योंकि देववाद में ईश्वर विश्वातीत है, इसलिए उससे भक्त अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकता, और सर्वेश्वरवाद में ईश्वर विश्व में व्याप्त है, जिससे उपासक और उपास्य का भेद ही नहीं रह जाता। इसलिए भक्ति, उपासना और ईश्वर प्रेम आदि संभव नहीं है। ईश्वरवाद इस कमी को पूर्ण करता है। इसमें ईश्वर विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। विश्वव्यापी होने के नाते वह मनुष्य के निकट भी है और विश्वातीत होने के कारण दूर भी है। अतः उपासक और उपास्य में दूरी भी बनी हुई है, जो धर्म के लिए आवश्यक है। ईश्वर के प्रति भय, श्रद्धा तथा प्रेम की चेतना बनी रहती है। ईश्वरवाद में मानव चेतना तथा ईश्वर चेतन को समता प्रदान की गई है। इसी से ईश्वर और मानव का संबंध बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वरवाद में धार्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। संभवतः इसीलिए फ्लिंट ने ईश्वरवाद को धर्म का पर्याय कहा है। अगला शीर्षक है निष्कर्ष। ईश्वरवादी धारणाओं में देववाद, सर्वेश्वरवाद, पुरुषोत्तमवाद तथा ईश्वरवाद, ये चार मत प्रचलित हैं। ईश्वरवाद सभी दृष्टिकोणों से अधिक समीचीन और वास्तविक प्रतीत होता है। फ्लिंट का यह कथन अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होता कि यदि कोई उच्च कोटि का धर्म संभव है तो वह शायद ईश्वरवाद ही है। इतना ही नहीं, फ्लिंट का तो यह भी कहना है कि ईश्वरवाद से कम कोई धर्म स्वीकार करने योग्य नहीं है और इससे अधिक की कोई संभावना नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ईश्वरवाद सर्वश्रेष्ठ मत है। अध्याय 7 समाप्त।